ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஆத்ம ஜானி கி மஹிமா இத்தனி படி ஹே கி வோ ஏக் நஹீ ஹே, வோ தோ சர்வ வியாபக் ஹே ஔர் அஷரீரீ ஹே, ज्योतिर्मय है. इस प्रकार जो ये लक्षण किए गए हैं, ये सारे के सारे किसके हैं? बोले आत्मा के हैं. यह मेरा जो स्वरूप है उसकी ऐसी महिमा है, मेरे अपने निज रूप की, निज स्वरूप की ये महिमा है. ये किसी और के लिए लक्षित नहीं हो रहे. इन शब्दों से लक्षित कराया जा रहा है. किसको लक्षित कराया जा रहा है? बोले आत्मा को लक्षित कराया जा रहा है. वह आत्मा जो मैं हूं, मैं. परंतु मैंने तो मैं समझा है अपने शरीर को. तो शरीर के साथ मैं समझने पर हमें ऐसा लगता है कि इन लक्षणों से लक्षित जो कराया जा रहा है वो कोई और है. परमात्मा हमसे कहीं अलग, दूर, ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है. हम कभी कभी कहते हैं ना, वो हमारे जो सबके ऊपर नीली छतरी वाला बैठा हुआ है, इशारा आकाश की ओर कर देते हैं, इशारा किसी और की ओर कर देते, उंगली कहीं और हमारी उठने लगती है. बोले नहीं, जो ऊपर नीली छतरी वाला है वो कोई ऊपर नहीं है. जो यहां है वही तो वहां है, जो वहां है वो यहां है, जो यहां नहीं वो कहीं नहीं, जो कहीं नहीं वो यहां नहीं. इसलिए जो यहां अंदर जो है वही बाहर है, बाहर जो है वही अंदर है, ऐसा संत कहते हैं. तो कहने का अर्थ मेरा तो, पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे. जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है, जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है, जो हमारे भीतर है. तो इसलिए यह जो महिमा है, ये जो शब्द है, यह कहकर जिसे कहा जा रहा है वह कोई और नहीं है, वो तो मेरा आपा है, अपना अपना मैं हूं. मैं सर्वव्यापक, मैं शुद्ध, मैं अशरीरी, मैं अक्षत, मैं स्नायुरहित, मैं निर्मल, और मैं सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट, स्वयंभू, ये जो भी हूं ये तो मैं. अपनी महिमा, ये महिमा किसी और की महिमा नहीं, हमारी अपनी महिमा इतनी महान है. पर सच अपने को न जानने के कारण, न पहचानने के कारण ही तो हम कितना अपने को छोटा समझे हुए हैं, कितना हमने दीन कर लिया है, कितना हीन कर लिया है, कितने नीचे स्तर तक हम अपने आप को ले आते हैं, कितना छोटा, दीन, हीन, कंगाल बनकर के हम, अकिंचन बनकर के, छोटे बनकर के हम रहते हैं. यदि हम वेदांत के स्वरूप से ज्ञान की महिमा को समझें, ज्ञान हमें छोटा नहीं करता, ज्ञान हमारी व्यापकता को हमें दिखाता है. ज्ञान के पास कुछ निर्माण विभाग नहीं है. मैं हमेशा कहती हूं, ज्ञान तो जो जैसा है उसको वैसा समझना, वो ज्ञान है. ज्ञान किसी हमें हम छोटे हो तो हमें बड़ा कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है. हम तो ये है ही, परंतु यही अज्ञान है कि हम अपने आप को नहीं जानते. दुख की बात यही है कि हम यूं तो अपने आप, कोई हमें कह दो कि, कोई कहे कि अज्ञानी जी, कोई हमको आकर के कह दे अज्ञानी जी राम राम, यूं तो हम कहेंगे बड़े अज्ञानी हैं जी, संसारिक हैं, ना समझ है, हम जानते नहीं हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए अज्ञानता बस हो जाता है. परंतु कोई आके हमें कह दे अज्ञानी जी तो हमें बड़ा बुरा लगेगा, दुख होगा. कष्ट होगा। बोले इसने मुझे अज्ञानी कह दिया। बोले क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप तो अज्ञान का नहीं है ना, स्वभाव से स्वरूप से तो हम ज्ञानी हैं ही हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये चाह नैसर्गिक रहती है, स्वाभाविक रहती है कि मैं सब कुछ जानूं। ऐसा कुछ न हो जो मैं न जानता हूं। जानने की जिज्ञासा हर के अंदर रहती है। ऐसी जिज्ञासा रहती है कि एक बार ज्ञान के लक्षण को लक्षित करके एक संत अपने शिष्यों को समझा रहे थे, सच्चिद आनंद का ये लक्षण ज्ञाप्ति का बता रहे थे। मैं जानूं ऐसी जो जिज्ञासा है, तो शिष्य समझ में नहीं आ रहा था। तो महाराज जी ने कहा, एक काम करो बेटा, कि कुछ दूर में एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हैं, उनको ये डिब्बा जो मैंने बंद करके दिया है, इसको ऐसे का ऐसा उनको दे देना। शिष्य के हाथ में जब डिब्बा आया तो उसने वो डिब्बा लिया और महात्मा के पास पहुंचाने के लिए गए, उनके जो मित्र थे। तो रास्ते में बड़ी जिज्ञासा हुई, ऐसी क्या चीज है महात्मा जी ने इस डब्बे के अंदर गुरुजी ने बंद कर रखी है, जिसको कहा कि तुम देखना मत, खोलना मत इसे, ज्यों का त्यों इसको ऐसे का ऐसे पहुंचा देना। बड़ी उथल पुथल हलचल हुई उसके अंदर, बड़ी बेचैनी हुई, रहा नहीं गया। आखिर उसने डिब्बे का ढक्कन उठाया तो उसके अंदर था क्या, बोले एक चूहा, जो डिब्बे से कूद करके बाहर आ गया और चला गया। अब तो वो रोए कि गुरुजी को मैं क्या कहूंगा, गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुम ऐसे के ऐसा वहां पहुंचा के आना, दे के आना। जब वापस लौटा बड़ा परेशान, बहुत दुखी, और गुरुजी के पास आकर के कहने लगा, गुरुदेव, रोने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? बोले, महाराज, आपकी आज्ञा का मैं पालन नहीं कर सका। बोले क्यों? क्योंकि आपने तो ये कहा था कि उस डब्बे को खोलना नहीं। महाराज, मेरे से भूल हो गई, मैंने डब्बे का ढक्कन उठाया और वो चूहा भाग गया, मैं वो तक नहीं पहुंचा। गुरुजी कहते हैं, बेटा, मैं तो तुझे ये जानता था, तुझे यही बताना चाह रहा था कि हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा कैसी है। मैं जानूं, जानने की चाह तो है, जिज्ञासा तो है, इसी का नाम है ज्ञाप्ति। ये जो चाह है, मैं सर्व विषयिक सारे विषयों को जानूं, सर्व विषयिक मुझे ज्ञान हो, ऐसी जो हमारे अंदर की जिज्ञासा है, ये ज्ञान का लक्षण है, यही ज्ञान का स्वरूप। चाहते तो है, परंतु क्या जानना चाहते हैं हम? क्या अपना वास्तविक स्वरूप जानना चाहते हैं? मैं कौन हूं? और जिसके अंदर ये जानने की जिज्ञासा है कि मैं अपने आप को, जहां हम सब विषयों को जानना चाहते हैं, वहां हमारे अंदर ये जिज्ञासा, मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को जानने की जिसके अंदर जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा को लेकर जब हम ब्रह्म विचार करने के लिए, अपने स्वरूप का विचार करने के लिए बैठते हैं, तो विचार के साथ ही एक एक कर जब हमारे परत हटने लगते हैं, तो को मोह को सोखा, इसके साथ हमारा जो स्थूल शरीर है, जगत आदि है, ये जगत है, संसार आदि है, संसार से निवृत्त हो गए, और संसार से निवृत्त होकर एकत्व मनोवश्यति सर्वभूत रूप आत्मा के हो गए, सर्वभूत रूप एक सब में एकत्व मनोवश्यति एक आत्मा का दर्शन होने लगा, आत्मवत दिखने लगे, और आत्मवत होकर जब अपनी व्यापकता को देखा तो उस व्यापकता में कहीं प्रकाश के अतिरिक्त हमें कोई शरीर नजर नहीं आया, अशरीरी अक्षत जिसका कभी क्षय नहीं है, नाश नहीं है। नाश तो किसका होगा, जिसका आकार होगा, प्रकार होगा, कोई रूप होगा, क्योंकि संसारिक लोगों को ज्यादा आकर्षण किसका होता है, बोले किसी न किसी नाम और रूप का होता है। और जो नाम रूप से बंधा हुआ है, नाम रूप से जो भास रहा है, उसी का नाम और रूप रहने वाला नहीं है, वही बिगड़ने वाला है। यहां कोई नाम नहीं है और कोई आकार रूप भी नहीं है, अपने स्वरूप में कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। और यह अत्यंत शुद्धम निर्मल है, कोई वासना नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई उसके अंदर अत्यंत निर्मल माने कोई कामना वासना संसार नहीं है। और सर्वदृष्टा सबको देखने वाला है, सर्वज्ञ ऐसा, उसे सब कुछ ज्ञान है सब, क्योंकि सर्वज्ञ तो वो है जो पीछे क्या पीछे का भी जानता है और आगे का भी जानता है। इस दीवार से बाहर क्या है ये नहीं दिख रहा है, परंतु ज्ञानी की तत्ववेता की दृष्टि वो दृष्टि है जो अत्यंत तत्ववेता ज्ञानियों ने ही तो हमारे लिए हमारे जीवन जीने की हमारी व्यवस्थाएं की, ज्ञानियों के द्वारा जो विधान किया गया, जिसे कहते हैं विद्वत परिषद, जो ज्ञानियों के द्वारा विधान किया जाता है वही सामान्य व्यक्ति के लिए धर्म हुआ करता है। यह हमारा आश्रम धर्म है, ये हमारा वर्ण धर्म है, ये जाति धर्म है। और इस प्रकार जो धर्म की व्यवस्थाएं की गई, आश्रमों की व्यवस्था की गई और वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई, जातियों की व्यवस्था की गई और लिंगों की व्यवस्था की, ये स्त्री धर्म है, ये पुरुष धर्म है, ये ब्रह्मचारियों का धर्म है, ये गृहस्थियों का धर्म है, ये जो धर्म का विधान किया गया, बोले ये सब विधान किसके द्वारा किए गए हैं, बोले यही तो इन ज्ञानियों के द्वारा किए गए हैं, इन तत्ववेत्ताओं के द्वारा किए गए हैं, इनके द्वारा ये किसी और ऐसा जो तत्ववेता ज्ञानी का विधान है, जिनके विधान से यह सब धर्म बनाए गए हैं, वही ऐसे व्यापक दृष्टि रखने वाले ज्ञानियों के द्वारा, क्योंकि अज्ञानी हजार इकट्ठे हो जाएं, उनके द्वारा जो निश्चित किया जाता है वो कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वो है जो ज्ञानियों के द्वारा, अर्थात तत्ववेता ज्ञानियों के द्वारा जो निश्चित किया गया। इसीलिए कहा यही प्रजापतियों के लिए, संवत्सर माने प्रजापतियों के लिए विधान किया गया कि कब कैसे कैसे चलना चाहिए। यह जो विधान है, बोले ऐसे तत्ववेताओं का जो मार्ग है और ऐसे तत्ववेता ज्ञानी का जो विधान है वो किसके लिए है, बोले इन सब संवत्सर के समान जो प्रजापति लोग हैं, प्रजा के लोग हैं, उसके लिए विधान किया गया है, ताकि इस विधान से चलकर वह भी उस तत्व तक पहुंच सके, उस सर्वोपरिष्ट दृष्टि तक वो भी पहुंच सके, उस आत्म स्वरूप को वो भी प्राप्त कर सके। ज्ञानी इसीलिए कहते हैं नारायण, संसार में सब भेद कर सकते हैं, सब भेद कर सकते हैं। भेद एक बार चर्चा हुई कि पारस कितना अच्छा है, कि वो लोहे को सोना बना देता है। इसलिए गुरु जो है माने ज्ञानी जो है उसकी संज्ञा किसकी होनी चाहिए, बोले पारस के समान उसकी उपमा होनी चाहिए और लोहे के समान अज्ञानी जीव की होनी चाहिए। जीव को कह दिया अज्ञानी को कह दिया लोहा और ज्ञानी को कह दिया पारस। बोले ये उपमा ठीक नहीं है, ये संज्ञा ठीक नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि पारस लोहे को सोना तो बनाता है परंतु फिर भी अपने और लोहे में फर्क रखता है, लोहे में और अपने में फर्क रखता है कि पारस लोहे को सोना तो बना देता है पर सोना बना करके वो पारस नहीं बनाता है, अपने में और उसमें अंतर फिर भी रखता है। इसलिए ज्ञानी तत्ववेता बोले वो नहीं हो सकता, गुरु वो नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि वह तो अपने में और उस अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रखता, वो तो अपना जैसा ही बना देता है। इसलिए कहा कि संसार में गुरु के समान, गुरु मत से अभिप्राय ज्ञानी तत्ववेता महापुरुष के समान कौन हो सकता है, उसकी समानता कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो अपने को आप जैसा ही, अपना जैसा ही स्वरूप अपने में और उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं करता। गुरु और शिष्य में इसीलिए जो कहते हैं भेद नहीं होता, छल नहीं होता, कपट नहीं होता, बीच में कोई प्रतिबंधक नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सब समाप्त कर देता है अपने। न गुरुर्वा न शिष्यो, आप आत्माष्टक का पाठ करते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं न वहां कोई गुरु है और न वहां कोई शिष्य है। ये शिष्य गुरु और शिष्य का भेद ही समाप्त हो गया। ऐसा जो तत्ववेत स्वरूप है जहां कोई भेद नहीं है, अभेद दर्शन है। इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा उस ज्ञानी की महिमा, उस तत्ववेता महापुरुष की महिमा बताई गई। वह महान पुरुष जिसे हम कह रहे हैं, वह सर्वोपरि सर्वोकष्ट रहने वाला, वह आत्मस्वरूप हमारा है। ये जो लक्षित इन लक्षणों से इन ये विश्लेषण नहीं, ये तो लक्षण है और लक्षणातीत होते हुए भी समझने के लिए जो लक्षण किए गए हैं वो किसके हैं? बोले ये हमारे अपने हैं। इन ग्रंथों में, इन उपनिषदों में जो महिमा नेति नेति कहकर बताई गई है ना, वो किसी और की नहीं है। ये वर्णन किसी दूसरे का नहीं है। यह जो वर्णन आप सुन रहे हैं ये किसका वर्णन है? बोले ये तो आपका अपना वर्णन है, आपकी अपनी महिमा, अपनी गरिमा इतनी ऊंची है। परंतु हम अपनी इस महिमा को, यह जो ये केवल आपको किसी महिमा से मंडित करके नहीं बताया जा रहा है, अपितु ये आप जो है वो बताया जा रहा है। तो आपका ये अपना स्वरूप है, आप अपने आप में इतने महान हैं, परंतु अपनी नासमझी से, अपनी नादानी से हमने अपने आप को क्या बना रखा है, कितना दुखी हमने अपने आप को किया हुआ है। जरा जरा सी बातों में हम रोने लगते हैं, जरा जरा सी बातों में हम हंसने लगते हैं, कभी विषाद कभी अवसाद में हम घिरे रहते और अपने पास जैसे मकड़ी तंतु को कहीं से नहीं लाती है, अपने आप से तंतु को पैदा करती है और उस तंतु से वो जाल बुनती है और अपने बुने हुए जाल में ही वो अपने उसके अंदर फंसती चली जाती है। उसी तरह से हम अपनी नासमझियों के ताने बाने से अपने आप के आगे एक बहुत बड़ा संसार का जाल रच लेते हैं मकड़ी के जाले के समान, और स्वयं उसके अंदर फंस जाते हैं। और उसके अंदर फंसते ही नहीं है, उसके अंदर मर जाते हैं, उस जाले में ही अटके रह जाते हैं, अपने को निकाले। और ये जाला है क्या? बोले केवल 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 अपनी नासमझी से पैदा किया, और इस नासमझी से रचे हुए इस जाले को, ये मकड़ी का जाला तो दिखता है, परंतु हमारा बुना हुआ जो जाल है ना, वो बाहर से देखना चाहो तो दिखेगा नहीं, उसे बड़ी गहराई से देखोगे, विवेक की दृष्टि से देखोगे तो तभी ये दिखाई पड़ेगा। इस विवेक की दृष्टि से देखने पर जो दिखाई पड़ने वाला मोह रूपी जाल है, इस जाले को दूर करने के लिए जब तक आपको अपने स्वरूप के विषय में सुनोगे नहीं, मैं जानती हूं कि एक बार के सुनने से हमारी स्थिति कोई स्थिति प्रज्ञ की बनने वाली नहीं है। हमारी स्थिति प्रज्ञ की जब बनेगी, तब जब बार बार हम सुनेंगे, हमारी मति में स्थिरता, और स्थिरता के साथ जब तक निर्द्वंद होकर एक जगह बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक ये आत्म स्वरूप के जो लक्षण हैं, इन पर हमारी स्थिरता विचार में ध्यान में नहीं आ सकते। इसलिए इन शब्दों का हम अपने अंदर अनुभव करें। जब एकांत में बैठें, विचार करें, तो अपनी व्यापकता को, अपनी सर्वगतता को, अपनी शुद्धता को, अपनी अशरीरता को, इन शब्दों के ऊपर, इसको लक्ष्य में करते हुए, ध्यान में करते हुए, इस विचार में, इस चिंतन में, इस मनन में हम अपने को ले जाएं, अपने अंदर की ओर, और फिर अनुभव करें कि आप स्वयं में जो आपका स्वस्वरूप है, अपना आपा है, वो कितना महान से महत्तर है, कितना महान से महत्तर है। ऐसी महानता आपकी अपनी है, और इस महानता को पहचानो, और इस महानता को जानकर, इसे पहचानकर, अपने मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण कर। कभी परिभू स्वयंभू, कभी कहा कि वह जो हमारा दर्शन है वो क्रांति का दर्शन है। ऐसा दिव्य, ऐसी क्रांति जब अपने अंदर, अपने स्वरूप में हमने जाना, तो ये किसी के द्वारा बनाई नहीं है, स्वयंभू है, अपने आप से स्वयं प्रकट हुआ। यह बड़ी महिमा है ना, जहां जहां स्वयंभू लिंग है वहां आप दौड़ दौड़ करके जाते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग है, यहां एक दिव्य ज्योति है, यहां जल चढ़ा के आए। हम ज्योतिर्लिंग के पीछे दौड़ते हैं, बोले कि कभी सोमनाथ जा रहे हैं, कभी मल्लिकार्जुन जा रहे हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं आप। यह ज्योतिर्लिंग में हम किस लिए जाते हैं कि यहां तो स्वयं ज्योति प्रकट है, यह तो बाहर के ज्योतिर्लिंग है नारायण, कभी अपने अंदर का ज्योतिर्लिंग भी देखो। जो अपने भीतर की ज्योति है, जो अंतः प्रकट ज्योति है, अंतर में स्वयं से प्रकट जो ज्योति है, उस ज्योति का भी दर्शन करने की कभी इच्छा होती है, मैं उस ज्योति से भी तो मिलूं जो मेरे अंतर घट में प्रकाशित है, जो मेरे भीतर प्रकट है, और उस भीतर प्रकट ज्योति का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य और सफल हो जाए। उस ज्योति, जो ज्योति प्रकट ही है, उसे प्रकट कराना नहीं है, परंतु उसके लिए तो केवल आपको अपना ध्यान, अपना लक्ष्य अपने भीतर करना है। लक्ष्य बाहर की तरफ नहीं, लक्ष्य भीतर की तरफ है। इसलिए आओ, लौटो अपने भीतर, अपने भीतर बैठ करके स्थिर होकर अपने आप को देखो और इसका अनुभव करो, तो तब आपको उपनिषद का ये आठवां मंत्र समझ में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देती हूँ। शेष चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।